शांति, इंसान पुरुष और प्रकृति का अद्भुत संगम है। पुरुष माना आत्मा और प्रकृति माना शरीर। शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के पास सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं। आत्मा बेसिकली कुछ और नहीं है, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज है। यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे। सत्युग में या कहे स्वर्ग में हम आत्माएं सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं संपन्न थी, सतो प्रधान थी, और सातों जो दैवी गुणों से मनुष्य इंसान दैवी गुणों से संपन्न था। और कलयुग में क्या हुआ, आत्मा जो थी सातों गुणों संपन्न थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी और तथा शरीर भी सतो प्रधान था और आत्मा भी सतो प्रधान था, सातों एनर्जी से भरपूर थी। प्रकृति भूमि जल वायु अग्नि आकाश पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो भी एक्यूरेट था। किंतु कलयुग के अंत में आके क्या हुआ, आत्मा तमो प्रधान हो गई, सातों एनर्जी कम हो गई, लगभग ना के बराबर हो गई, और शरीर भी अब भूमि भी तमो प्रधान हो चुकी, उसमें कोई ताकत नहीं, सातों एनर्जी नहीं, और जल में भी एनर्जी नहीं, वायु भी खराब दूषित हो चुकी है, अग्नि भी खराब हो चुकी है, अग्नि भी अभी ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है, और क्या हो रहा है, आकाश भी दूषित हो चुका है, स्पेस भी दूषित हो चुका, पांचों तत्व भी दूषित हो चुके। अब हम क्या करें, अब हमें कुछ नियम थे, कुछ नियम है, पुरुष के भी कुछ नियम है, प्रकृति के भी कुछ नियम है। सत्युग में उनका सामंजस्य था पूरा, इसलिए हम सदा शांत थे, सुखी थे और निरोगी थे, निरोगी काया थी। अभी क्या हुआ, कलयुग के अंत में आके क्या हो गया, क्या हुआ, अभी सभी अशांत दुखी और रोगी बन चुके। वो जो नियम थे, पुरुष के नियम थे और प्रकृति के नियम, उनको एक्यूरेट फॉलो कर पा रहे थे, अभी वो नियम सारे टूट चुके हैं। और ये बहुत ही, मैं उसी मैकेनिज्म में जाता हूं, अभी वो नियम पिछले 1986 से इस पे काफी काम हुआ है, कैसे आत्मा कैसे विचारों के द्वारा, मतलब मन के द्वारा शरीर को कंट्रोल करती है। अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो यही देखने में आया कि कोई दवाई तो बनी नहीं, वैक्सीन कोई बनी नहीं, कि तो काम क्या आई, काम आ रही सिर्फ इम्यूनिटी है ना, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति काम आ रही है। जिसके पर रोग प्रतिरोधक शक्ति है 80 साल का है, वो भी ठीक हो रहा है, कि तो जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं 25-30 साल में भी, इवन बच्चा भी है 10 साल का, वो भी मर जा रहा है। तो ये जो है नियम, क्या नियम है और उसका क्या, अगर नियम को सही ढंग से हम पालना, इस समय भी हम आज भी उस नियम का इफेक्ट देखने में आ रहा है ना, उसी को हम समझते हैं कैसे कैसे है। जो इंटरफेस है आत्मा और शरीर के बीच में वो मन है। आत्मा के सात एनर्जी है, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, उससे आत्मा निर्देश करती शरीर को। और माध्यम क्या है, मन। मन के द्वारा, हालांकि मन आत्मा का ही एक सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म कर्मेंद्री है, जिसके द्वारा आत्मा शरीर को निर्देश करती है, किंतु वो कार्य कैसे करती है। शरीर का जो कंट्रोल रूम है वो ब्रेन है। शरीर हमारा 8 अंगों से बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रियां हमारी आंख नाक कान मुख और त्वचा है। त्वचा माने सारे शरीर पे जो त्वचा फैली हुई है, और अंदर मुख के अंदर भी है, सांस की नाली में भी है, पेट की नाली में भी, पेट के अंदर पूरी इंटेस्टाइन में भी है, इवन जो हार्ट की जो आर्टरीज है, या पूरे सिस्टम में 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है, उसके अंदर भी एक तरह की स्किन है, एंडोथीलियम है, 60,000 मील लंबी, वहां भी सेंस होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी चीज हमें देनी है लेनी, वो सब वहां सेंस होती है। तो ये जो इसके नियम क्या थे और क्या बने हुए थे उसको हम समझते हैं। हमारे अंदर ब्रेन से ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन, दो ब्रेन है, राइट माना ये दायां ब्रेन और बायां ब्रेन, इन दोनों का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। आठों अंगों में हार्मनी सामंजस्य बना रहे उसके लिए हार्मोनल सिस्टम बना हुआ है। हार्मोनल सिस्टम का कंट्रोल रूम पिट्यूटरी ग्लैंड है यहां पर। हाइपोथैलेमस लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे है और पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल उसके नीचे है। वो पूरे बॉडी के जो हार्मोन है ना उनको कंट्रोल करती है, उनका कंट्रोल रूम है। दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है और बिल्कुल उनके जंक्शन पे ही जैसे आत्मा की सीट है। आत्मा की सीट कहां है? आत्मा कहां बैठी हुई है? पॉइंट ऑफ एनर्जी है, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज है जो यहां बैठी हुई है। यहां से सब कुछ नरिश कर रही है। 100 अरब न्यूरॉन्स हैं और वो सारे 100 अरब न्यूरॉन्स हैं पीछे। यहां पर हमारे हायर ब्रेन है, नीचे लोअर ब्रेन है, पीछे वाला पार्ट फिर स्पाइनल कॉर्ड में चला गया और पूरी नर्व्स का जाल फैला हुआ सारे शरीर में, आठों अंगों में, 80,000 कोशिकाओं में। अब इसका जो बाबा ने आके सिखाया हमको, जो राजयोग जीवन शैली कह सकते हो या एक ऐसा जीवन शैली सिखाया जिससे हम आने वाले युग में सदा ही स्वस्थ रहने वाले हैं। वहां डॉक्टर कोई होगा ही नहीं, हॉस्पिटल कोई होगा ही नहीं, सदा निरोगी रहने वाले हैं, सदा सुखी रहने वाले हैं। वो हम अब सीख रहे हैं, बाबा हमको अभी सिखा रहे हैं। वो क्या है कि जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस से बिल्कुल दो नीचे, जैसे हमारा कोई भी हम कर्म करते हैं ना, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, पाप या पुण्य, उसके लिए यहां पर एक सिस्टम लगा हुआ है। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, सारे बॉडी में पूरा कंट्रोल गया हुआ, हर नर्व में गया हुआ। और यहां से फिर क्या निकला है, एक हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम निकला है, पाप और पुण्य का सिस्टम निकला हुआ है और वो फिर हर नर्व में गया हुआ है, पूरे शरीर में गया हुआ है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक को आप समझते समझ लाल तार है और पैरासिंपैथेटिक समझ लो हरी तार है। कुछ भी गलत करेंगे हम, कुछ गलत देखेंगे, कुछ गलत पढ़ेंगे, कुछ गलत सुनेंगे, कुछ गलत खाएंगे, कुछ गलत बोलेंगे, कुछ गलत सुनेंगे, कुछ गलत काम करेंगे हाथों से या पैरों से, विकारों के वश करेंगे, तो लाल तार एक्टिव हो जाएगी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव होके क्या होगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगी, बीपी तेज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और आपका क्या होगा, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और खून गाढ़ा हो जाएगा, खून जमने लगेगा, आप फाइटिंग मोड में आ जाएंगे, फाइट और फ्लाइट, या तो डर लगना शुरू हो जाएगा या लड़ने के मोड में आ जाएंगे, क्रोध आने लगेगा और अंदर एनर्जी जलनी शुरू हो जाएगी, सैडनेस, उदासी आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा आप शरीर में जाने नहीं, ऐसा फील होगा। और इसकी बजाय अगर ये हरितार, इसको वैसे हिंदी में जिसमें कहते हैं सुषुम्ना और हिंदी में कहते हैं आयुर्वेद में सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी ना, खैर मैं हिंदी में नहीं जाता हूं, आयुर्वेद में नहीं जाता हूं, तो ये दो नाड़ियां जैसे कहते हैं ना, ये दो पूरे शरीर में फैली हुई है। अगर अगर आप आपने परमात्मा की श्रीमत पे कार्य किया, अच्छा कर्म किया, श्रीमत पे कार्य किया या शांति से हर चीज को समझा, देखा, त्रिकालदर्शी बन के कार्य किया, तो क्या होगा, हरी तार एक्टिव हुई, वो भी सारे शरीर में फैली हुई है, हार्ट रेट कम हो गया, बीपी कम हो गया, खून पतला हो गया, सब जगह पहुंच जाएगा और आप रिलैक्सेशन मोड में आ जाओ, नींद आ जाएगी, नींद मतलब आप रिलैक्स हो जाओ, काम शांति से कर सकोगे। अगर वो लाल तार एक्टिव हो तो नींद नहीं आएगी आपको, आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और उसके बीच में एक और नाड़ी है, उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो हमें जागृति पैदा करती है। एक तो ये सिस्टम बन गया और फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, जो भी हमारी सोच होगी उसके अनुसार यहां से हार्मोन निकलेंगे, फैक्टर्स निकलेंगे, वो पिट्यूटरी पर असर करते हैं, पिट्यूटरी से फिर वो हार्मोन निकलते हैं और वो एक इसके नीचे पीछे एक ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड है, वो भी एक वंडरफुल ग्लैंड है, वो नींद दे देती है, नींद का हार्मोन मेलाटोनिन निकल जाता है वहां से, उसका भी समय है निकलने का। कि बाबा ने नियम बनाया अमृत वेले का समय क्यों बनाया, मुरली का समय 7 से 8 क्यों बनाया, इसके पीछे राज है। दिन में सोने का नियम क्यों बनाया कि ब्राह्मण जो है दिन में रेस्ट कर ले, खाना खा के आधा घंटा सो जाओ, एक घंटा सो जाओ, है ना, उसके पीछे राज क्या है। शाम का योग का समय क्यों योग करना है, शाम का नुमा शाम योग क्यों करना चाहिए, रात को सोने के पहले वेंटिलेट क्यों करना चाहिए, बाबा को पोता मेल क्यों देना चाहिए, चार्ट क्यों भरना चाहिए, है ना भाई, मुरली भी रिवाइज करके सो जाओ, क्यों रात को सोने के पहले मुरली पढ़ लो, और फिर आप 2-3 मिनट याद करके सो जाओ बाबा को, क्यों याद कर, ऐसे ऐसे क्यों नहीं सो जाओ? 4 ब्राह्मणों के नियम है, अमृत वेला, मुरली, फिर सारा दिन अटेंशन, अटेंशन माना सारा दिन जो मुरली सुनी ना उसका मनन चिंतन मंथन सिमरण, और सोने के पहले वेंटिलेशन, माना पोता मिल दो बाबा को सच्चाई सच्चाई से, सुबह से लेकर आज रात तक जो भी कुछ गलत कर्म कर लिया, गलत या अच्छा जो भी किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब समाचार बाबा को दो। 4 लेवल पे समाचार देने चाहिए बाबा को। कौन कौन से लेवल पे? तो मन में कुछ हमारे कुछ गलत विचार चल गए, गलत भावनाएं आ गई, गलत दृष्टि से किसको देख लिया, गलत कुछ सोच लिया, गलत कुछ पुरानी बात याद आ गई, है ना, शरीर में कुछ मेरे को बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, घुटना खराब है, कमर खराब है, कुछ भी बीमारी उसका विचार चल रहा है। फिर परिवार में कुछ चल रहा है, परिवार में कोई बीमार है, तकलीफ है, पैसे की कमी है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी एक टेंशन दिमाग में रहती है इंसानों के। और चौथी जो क्या बात, धंधे की टेंशन रहती है, ब्राह्मणों को सेवा की टेंशन रहती है ना? कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, होता नहीं होता, मैं खाली बैठा हूँ और कोई सेवा ही नहीं हो रही आजकल तो हमसे, है ना। तो ये 4 फील्ड होते हैं जहां हमको वेंटिलेशन, जहां पोता मेल देना होता है हमको बाबा को, ठीक है। अब इसका क्या नियम है कि क्यों दें, चार्ज क्यों भरे, याद का चार्ज क्यों भरे, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है ना? फिर 4 हमारे आधार स्तंभ भी बने हुए, वो भी 4 नियम है, पवित्रता, शुद्ध शास्त्रीय भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। अब गुणों को छोड़ो, दैवी गुणों की धारणा करें, ये भी क्यों बने हुए हैं? 4 नियम और 4 मर्यादाएं कह देते, वो भी इसकी मर्यादाएं क्या, वो भी नियम ही है, और उसकी पालना का महत्व क्या है हमारे जीवन में वो समझे हम। तो एक तो मैंने बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा हो गया, पूरी शरीर में गया हुआ है, कुछ भी छिप नहीं सकता, आप छिपके कितना मर्जी कर लो असर शरीर पे आएगा, कहीं भी कर लो चाहे आप, छुप नहीं सकता। और इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल फिर बाबा के कंप्यूटर में गया हुआ है, सुपर कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर में गया हुआ है, यहीं से उसको पता लगता है कि क्या कर, क्या किया, क्या नहीं किया, हिसाब किताब जमा होता रहता है पूरा ना, ये डाटा यहाँ से पूरा सा डाटा जाता रहता है ना, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पूरा का पूरा। फिर हार्मोन्स है, पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलेगा ना उसका कनेक्शन, फिर वो 4 से 5 के बीच में निकलेगा, उसका कनेक्शन आनंद से है। अगर हम आनंद में रहे, 20 मिनट भी आनंद में आ गए 4 से 5 के बीच में, 4 से 4.5 के बीच में, तो हार्मोन बैलेंस में निकल जाएंगे। पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से 9, पिट्यूटरी से 8 और 1 पीनियल ग्लैंड से नींद का वो हार्मोन जो उसका बैलेंस निकल जाएगा पूरा अगले 24 घंटे के लिए, आपकी डोज निकल गई। इसलिए कहते हैं अमृत बरसता है सुबह सुबह, ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप मेडिटेशन करें तो अमृत बरसता है। अमृत वेला कहते हैं, अमृत वेला क्यों कहते हैं, ये हार्मोन ही अमृत है, ये हार्मोन अगर बैलेंस में निकल गए, सामंजस्य में निकल गए, अमृत निकल गया। अमृत माना आपके पूरे सिस्टम में ऐसी एनर्जी, ऐसी हार्मोनी हो जाएगी 80,000 अरब कोशिकाओं में, सारे हार्मोन नीचे वाले बैलेंस में निकल जाएंगे कि अगले 24 घंटे में आपका जो भी मन और तन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ये आपने कर दिया, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है। आज लोग क्या कर रहे हैं, लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं ना, नाश्ता सुबह कितने बजे करना, लंच कितने बजे, डिनर कितने बजे करना, उसका भी नियम है, क्या खाना क्या नहीं खाना इसका भी नियम है। बाबा ने कहा शुद्ध सात्विक भोजन करो, समय पर करो, बाबा की याद में क्यों करो भोजन, ये भी नियम बाबा ने बनाया है। बाबा की याद में भोजन क्यों बनाओ, ब्रह्मा भोजन की बात की, वो क्यों करो, उसका भी नियम है। तो इसकी पालना करें तो उसका क्या फायदा है, इसका नहीं तो नहीं करें तो क्या क्या नुकसान है, वो भी हमें समझ होनी चाहिए। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे शरीर पर, क्यों बीमारियां आएंगी, योग लगेगा ही नहीं, इतनी बीमारियां शरीर में भर जाएंगी कि आप उनसे जूझते रह जाओगे, कर्म भोगी भोगते रह जाओगे, जमा तो कुछ होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये क्लैरिटी अपने अंदर, ये बाबा, ये जो है हमारा मैकेनिज्म पूरा क्लियर हो गया। अभी पिछले लगभग समझो 20 और 14 कितने साल हो गए, 34 ईयर्स की रिसर्च में ये जो सारे वर्ल्ड में इसमें काम हुआ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रोलॉजी में, ये बातें बहुत क्लैरिटी में आ गई। इसलिए धीरे धीरे लोग मेडिटेशन को मानना शुरू कर दिया, रिकमेंडेशन शुरू हो गई सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मेडिकेशन काम नहीं कर रही, मेडिटेशन से ठीक होगी बीमारी, मेडिटेशन ऊपर से काम करेगा, मेडिकेशन अंदर, सॉरी मेडिकेशन ऊपर से काम करेगा और मेडिटेशन अंदर से ठीक करेगी बीमारी, कोई बीमारी भी, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, एसिडिटी हो, कुछ भी हड्डी टूट गई हो, कुछ भी कमर की हड्डी खराब हो, घुटने की हड्डी खराब हो, गर्दन की हड्डी खराब हो, माइग्रेन हो, एपिलेप्सी हो, डिप्रेशन हो, स्किजोफ्रेनिया, कुछ भी बीमारी हो, उसका काम अंदर से ठीक होगा, वो सर मेडिटेशन कर सकता है। तो इसके नियम बनाए गए, तो ये परमात्मा हमें एक्यूरेट वो नियम बता रहा है जो कि हमें उसको करने से हम सदा सदा के लिए हो जाएंगे और वो कलयुग के अंत तक काम आएंगे। उस नियम को धीरे धीरे हम तोड़ते जाएंगे, बीमार होते जाएंगे, मन से भी रोगी बनते जाएंगे, शरीर से भी रोगी बनते जाएंगे। चरक संहिता में यही बात थोड़ी सी कोशिश की गई है कहने की कि व्यवहार आहार विहार, अपना व्यवहार बदलो, व्यवहार में पवित्रता शुद्धि लाओ, शुचिता लेके आओ, पवित्रता लेके आओ, दैवी गुण लेकर के आओ, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए लेके आओ, पहले अपने लिए लेके आओ फिर दूसरों के लिए, आहार अपना शुद्ध सात्विक बनाओ। और विहार में पांच बातें आती हैं, विहार में पांच बातें कौन सी आती हैं, पहली तो बात है अपने आपस आसपास आपका आभामंडल कैसा है, आपका प्रभामंडल कैसा है, सबसे बड़ा संघ तो हमारा वो है विहार, किस विहार मतलब किस वायुमंडल में आप रह रहे हैं, विहार का मतलब क्या, किस वायुमंडल में आप रह रहे हैं। तो पहले तो अपना वायुमंडल बनाओ, जो आप सोचते उससे आपका वायुमंडल बनता है, ऑरा बनता है, आपा मंडल बनता है। दूसरा संघ, किसका संघ करते हो, क्योंकि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि को चाहिए सत्य, बुद्धि का भोजन है सत्य, सत्य दोगे तो बुद्धि ठीक काम करेगी, सत्य माने सत्य की समझ, ज्ञान, सत्य मैं आत्मा हूं ये ज्ञान ABCD है ना, ये मुरली बाबा की मुरली जितनी दोगे तो उतना क्या बुद्धि ठीक काम करेगी। मन का भोजन है क्या, मन का भोजन है संकल्प या कहें गुण, दैवी गुण दोगे तो मन ठीक काम करेगा, अच्छे गुण दोगे, अच्छे विचार करोगे तो शुद्ध संकल्प दोगे तो मन ठीक काम करेगा, एनर्जी बॉडी में जाएगी, और अगर शुद्ध संकल्प दे दोगे आप गुणों वाले संकल्प दे दोगे तो एनर्जी बॉडी में नहीं जाएगी, शरीर निढाल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और फिर जो तीसरी जो चीज है संस्कार, संस्कार को चाहिए संघ, अगर देहधारियों का संघ करोगे तो बीमार हो जाओगे, गलत संघ पड़ेगा, गलत बीमारियां होंगी, और परमात्मा का संघ करोगे योग, इसलिए संस्कारों का है, संस्कार भस्म होते हैं पुराने वाले योग से, परमात्मा के संघ से भस्म होंगे। अगर परमात्मा से सारा संबंधों का हमें संघ रहेगा तो क्या होगा, इसे योग कहते हैं, इसी को राजयोग कहते हैं। तो अगर वो रहेगा संस्कार पुराने भस्म होंगे, नए संस्कार उसके संघ से, बाबा हमारे संस्कारों में समा जाएगा और हम देवता बन जाएंगे। सत्युग में बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है सत्युग में, हमारे संस्कारों में समाया हुआ है ना, बाबा ऊपर है ना किंतु संस्कारों में हमारे आ गया है, इसलिए देवी देवताओं को हर एक को भगवान कहते हैं। सत्युग में देवी देवताओं क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, भगवान भगवती कहते हैं, पूजा होती है, पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर क्या आ गया है, भगवान के गुण आ गए, दैवी गुण आ गए। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो मैकेनिज्म है, और फिर क्या है, एक चीज और बनी हुई है, एक तो सुबह हमने आनंद, अगर फिर जो यहां पर थायराइड ग्लैंड है, एनर्जी ग्लैंड है, कि हमारा एनर्जी के लेवल क्या रहेगा, पैराथायराइड हड्डियां कितनी मजबूत रहेंगी, यहां पे इंसुलिन है, पेनक्रियाज है, वो हमारी कितनी डिसाइड करेगी, एनर्जी कितनी हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमने खा तो लिया, खाना तो खा लिया, प्रोटीन हमारी हड्डियों में, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगी, मसल ठीक बनेंगी नहीं बनेंगी, वो भी एक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बना हुआ है, इंसुलिन के बगैर यूज नहीं होगा, फैट भी इंसुलिन के बगैर ठीक यूज नहीं होता, तो करेंसी है इंसुलिन। फिर एड्रेनल ग्लैंड है, उसके अंदर से एक तो इमरजेंसी के लिए निकल रहा है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सुनते होंगे, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा निकल गया हमारा, टेंशन होती है तो एड्रेनलिन निकलता है ना, हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ जाता है, और एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है क्रॉनिक चैलेंज के फेस करने के लिए, रोज हमारे सामने चैलेंज है, हर एक के पास, जो घर में माताएं बहनें काम करती हैं उनके पास भी चैलेंज है कि आज हमें इतना काम करना, ये करना, इतना खाना बनाना, इतने कपड़े धोने, इतना सारी ध्यान रखना, बच्चों की स्कूल भेजना, ये काम करना, और जो ऑफिस में काम करते हैं बहनें या भाई उनके अलग काम है, बीकेएस के जो समर्पित भाई बहन उनकी अलग दिनचर्या है, उनके पास भी चैलेंज तो उनके पास भी है। तो सुबह से जैसे उठते हैं ना हम लोग, आठ उठने के आधे घंटे बाद ही वो हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं, कौन से वाले, वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलना शुरू होता है, स्टीरॉयड निकलना शुरू होता है एड्रिनल ग्लैंड से, वो 8 बजे तक निकलता है सुबह से, 4 बजे उठे ना आप 4:30 से शुरू हो जाएगा, 6 बजे उठे 6:30 से निकलना शुरू हो जाएगा। और वो अगर पॉजिटिव विचार रहेंगे, टीम, मन में 4 बातें होती है, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, अगर वो टीम पॉजिटिव रहेगी तो हार्मोन कॉर्टिसोल बैलेंस में निकल जाएगा 8 बजे तक। अगर एक भी विचार नेगेटिव आ गया, एक भी भावना नेगेटिव आ गई, किसी के प्रति गलत वृत्ति गलत हो गई, दैहिक वृत्ति हो गई या घृणा की वृत्ति हो गई, ईर्ष्या द्वेष की वृत्ति हो गई, तो 8 बजे तक वो हार्मोन गलत निकल जाएगा, वो ज्यादा निकल जाएगा। अगर बैलेंस में निकल गया तुम, फिर तो क्या होगा, सारा दिन शांति, प्यार, खुशी से काम होता रहेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिव हो जाएंगे आप। अगर वही आपने क्या किया, वही आपने क्या कर दिया, आपने उसकी बजाय ज्यादा हार्मोन निकाले, सुबह उठते ही मोबाइल पे लग गए, टीवी पे लग गए, है ना, इंटरनेट पे लग गए, लोगों से बातचीत में लग गए 8 बजे तक, तो फिर इतना ज्यादा निकल जाएगा, सारा दिन चिड़चिड़ापन, जल्दी चिंता और चिड़चिड़ापन आता रहेगा, गुस्सा आता रहेगा हर बात में। देखो कितनी बड़ी दिनचर्या बना के दी भगवान ने हमको, है ना। तो 8 बजे तक हमें क्या करना, फिर 4 बजे निकलेगा दोबारा यही वाला हार्मोन, उसकी दिनचर्या बना के 1 बजे के बाद जो कुछ सोचोगे ना आप, टीम रखोगे उसके अनुसार वो 4 बजे वो हार्मोन निकलेगा, 4 बजे तक निकलता रहेगा। अब 4 बजे के बाद अगर वो डिसाइड करेगा आपका 2 से 4 का पीरियड कैसा गया, उस पर डिसाइड होगा कि शाम कैसे बीतेगी, सुबह 8 बजे तक जो किया ना उसकी वजह उसका डिसाइड होगा 2 बजे तक का टाइम कैसे बीतेगा, और 2 से 4 के बीच में जो किया ना आपने वो डिसाइड करेगा शाम कैसे, 4 से 10 का टाइम कैसे बीतेगा, शांति प्यार खुशी से बीतेगा, टेंशन में बीतेगा, कैसे बीतेगा। और फिर शाम को 6 से 4:30 जो हम करने जा रहे हैं उसका क्या असर है, उसका असर ये है कि जो हम शाम को 6:30-7:30 योग करते हैं ना, वो हम लोग, हमारा मूड चेंज हो रहा है, हम नरिशिंग मोड से, हमारी बॉडी नरिशिंग मोड में है, खाना खा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, फिर बॉडी वॉशिंग मोड में जा रही है 7:30 के बाद, मोड बदल रहा है ना। अगर हमने आनंद का अनुभव कर लिया शाम को आधा घंटा, तो क्या होगा, बड़ी बढ़िया वॉशिंग हो जाएगी बॉडी की ना पूरी, सारी सेल्स टॉक्सिन से बाहर निकल जाएंगी, बीमारी, टॉक्सिन से, टॉक्सिन जमा होता है तभी तो बीमार होते हैं हम, कोई भी सेल में टॉक्सिन भरे तभी तो बीमार होते हैं, अब टॉक्सिन सारे निकल गए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये नियम मर्यादाओं का फर्क है ना, है ना। तो 4 से 5 अगर थोड़ी देर आपने अमृत वेला कर लिया, 20-25 घंटे में आधा घंटा बाप से कंबाइन हो गए, लवलीन हो गए, बस ये स्थिति चाहिए, लवलीन स्थिति हो गई, 18 हार्मोन बैलेंस में निकल गए। फिर 8 बजे तक मुरली पढ़ते रहो, मुरली का मनन चिंतन कर चलता रहे, कोई भी नेगेटिव टीम नहीं आए, नेगेटिव विचार, भावना, वृत्ति, स्मृति नहीं आए, सारा टाइम मुरली का मनन चिंतन, मंथन, सिमरन, नहाते हुए भी, स्पर्श करते हुए, सब कुछ करते हुए मुरली में आ गए। 8 बजे तक तो मुरली सुनते हैं हम, तो हमारी टीम तो पॉजिटिव ही रहती है, तो हार्मोन कॉर्टिसोल निकल गया, सारा दिन शांति, प्यार, खुशी से काम करते हैं, और बीच बीच में बूस्टर डोज लेते रहते हैं, इंजेक्शन की बूस्टर डोज होती है ना, वैक्सीनेशन करते ना, बूस्टर डोज लगाते ना, 1 लगाई, फिर 1 महीने पर लगाई, फिर 6 महीने पर लगाई, तो आपकी सारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी हो गई। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में मुरली का पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, अटेंशन रखते हैं, मनन चिंतन, मंथन, सिमरन चलता रहता है। 1 बजे बाबा की याद में मुरली द्वारा पढ़ ली, खाना खाने से पहले मुरली पढ़ ली, मुरली पढ़ के फिर बाबा को, बाबा की याद में भोजन कर लिया, भोजन करके फिर हमने फिर मुरली पढ़ ली, मुरली का मनन चिंतन किया, फिर आधा घंटा सो गए, 1 घंटा सो गए, 1.5 घंटा सो गए, 4 बजे उठे तो 6 विचार से सोए, बाबा कहते याद करते करते सो जाओ, नींद बढ़िया आएगी, और 6 विचार तो कॉर्टिसोल बैलेंस में निकल आया, कॉर्टिसोल बैलेंस में निकल आया तो क्या हुआ, शाम अच्छी बीती, शांति, प्यार, खुशी की बीती, शाम को योग कर लिया तो आनंद से हो गया काम, बढ़िया है ना, योग कर लिया तो अंदर से हमारी रिवर्सल मोड बदल गया, नहीं परफेक्ट मोड बदल गया, वॉशिंग मोड में बॉडी चली गई। रात को लेटर लिख दिया बाबा को, सारी बात बता दी, जो कुछ भी गलती हुई थी बाबा को बता दी, हमारी फ्रीक्वेंसी 15-20 हो गई थी, वापस लेटर लिखने से क्या हुआ, हमने अपना माफी मांग ली, कन्फेशन कर लिया, तो हमारी मोड क्या हो गया, हमारी एनर्जी ठीक हो गई, हमारी जो है ना वो परफेक्ट हो गई, हमारी जो है फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। फिर हमने मुरली पर चार्ट भर लिया, अपने घंटे घंटे की हमारी प्रोग्रेस चेक हो गई, फिर हमने क्या किया, मुरली पढ़ने के बाद फिर हमने अपना वो मुरली पढ़ ली, मुरली से मन प्लेन हो गया, 6 हो गई, अब 4 मन आनंद, 3 मन आनंद, 2 मन आनंद, तो आनंद आ गया, गहरी नींद, एकदम बढ़िया गहरी नींद आएगी, अपने आप टाइम पे उठ जाओगे, अमृत वेला उठ जाओगे, और शुद्ध पवित्रता जितनी आती जाएगी, शुचिता आती जाएगी, तो वो पवित्रता, क्योंकि पवित्रता हमें पवित्र दुनिया में जाना है, तो उसके बगैर योग लगेगा, अमृत वाला होगा नहीं। शुद्ध सात्विक भोजन, जैसा अन्न वैसा मन, तो मन शुद्ध रहेगा, विचार उससे ही पैदा होंगे, विचार बनते ही, मन हमारा बनता ही अन्न से है ना, तो वो होगा। सत्संग, बाबा की याद में संग रखेंगे, बाबा और मुरली का संग रखेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। और गुण, दैवी गुणों की धारणा, अवगुणों की धारणा मत करो। एक बार चिंता करोगे 18 घंटे के लिए सब गड़बड़ हो जाएगा, एक बार गुस्सा करोगे 3 दिन तक सब सिस्टम खराब हो जाएगा, अब उदास हो जाएगा 5 दिन तक सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसलिए दैवी गुणों को धारण करो। तो ये 4 नियम और 4 हमारे, ये 8 नियम है हमारे ब्राह्मण जीवन के, तो इनकी पालना का महत्व ये है। अगर देवी देवता बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकार देवान बिल्कुल खत्म हो जाए, अहिंसा परमो धर्म, काम विकार कांश भी खत्म हो जाए, क्रोध लोभ मोह अहंकार छूट के सारे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज हमारे ऊपर आ जाए, इसके लिए अति आवश्यक है कि हम इन नियमों और पालना का, ये बाबा ने जो हमें नई जीवन शैली सिखाई है, राजयोग जीवन शैली, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, उसका यही महत्व हम प्रॉपर ढंग से यूज करें तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी। अभी देवता में यहां बनना है, देवी देवता बन जाए यहीं पर ही। ओम।